नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। तमिलनाडु में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो रहा है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों और बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया, उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर और जगदल तथा कोलकाता के जोड़ा सांको में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दक्षिण कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति ई जे म्यूंग के सम्मान में भोज का आयोजन किया। भोज के दौरान राष्ट्रपति ई ने कहा कि भारत के साथ मिलकर नए भविष्य की राह खोलने में कोरिया गणराज्य परस्पर लाभकारी भागीदार बन गया है। उन्होंने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए भारत का सर्वाधिक विश्वसनीय साझेदार बनने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारत स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत और दक्षिण कोरिया शांति और स्थिरता का संदेश देते हैं। साझा प्रयासों के माध्यम से दोनों देश शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र में योगदान जारी रखेंगे। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक आपसी व्यापार को बढ़ाकर $50 अरब करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्यूंग के साथ वार्ता के बाद ये घोषणा की। दोनों देशों ने खेल, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों, लघु और मध्यम उद्यमों तथा औद्योगिक सहयोग समिति की स्थापना के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए नए अवसरों की तलाश करेंगे।
हम चिप से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे।
भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल इस सप्ताह अमेरिका का दौरा करेगा। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी। उन्होंने इस दौरे को द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। दिव्यांगजनों के लिए यात्रा नियमों में बदलाव किया गया है। भारतीय रेल ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगजन अब वैध विशिष्ट दिव्यांगजन पहचान पत्र के साथ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के अनारक्षित डिब्बों में यात्रा कर सकते हैं। सरकार ने किसानों के लाभ और घरेलू बाजारों की स्थिरता के लिए अतिरिक्त 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय उत्पादन अनुमानों, स्टॉक की उपलब्धता और मूल्य रुझानों की समीक्षा के बाद लिया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष रबी फसल में गेहूं की बुवाई बढ़कर 334 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन सत्र 2 के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में कुल 2,50,182 अभ्यर्थी जेईई एडवांस्ड के लिए योग्य घोषित हुए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों में अश्वगंधा की पत्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्राधिकरण ने खाद्य कारोबार संचालकों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने उत्पादों में केवल अश्वगंधा की जड़ और उसके अर्क का ही उपयोग करें। प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य और सुरक्षा आयुक्तों को कड़ी निगरानी रखने और नियमों का पालन न करने की स्थिति में उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज हैदराबाद में शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।